الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر معرف القرآن جلد نمبر 3 میں سے پڑھ رہے ہیں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے معرف المسائل پچھلی کئی کلاسوں سے چل رہی ہیں. تو ان میں ہم پیج نمبر 59 کے اوپر پہنچ گئے تھے، اور تقریباً ذبیحہ والا مسئلہ جو ہے وہ پڑھ کے ہم نے مکمل کر لیا ہے. امید ہے کہ سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ بھی کہ ذبیحہ اہل کتاب کا حلال ہونا، تو اس کے بھی جو ہیں جو شرطیں ہیں کہ بھئی وہ واقعی اہل کتاب ہونا چاہیے جس کا ذبیحہ جو ہے وہ ہم کھا رہے ہیں، اور اس سے بھی پہلے جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ ذبیحہ ہی ہونا چاہیے، جھٹکا یعنی جو بالکل ہی چوٹ لگ کر کے مر گیا ہو، یا اس کو جو ہے وہ بندوق سے گولی مار کے مار دیا گیا ہو، یا اس کو جو ہے وہ درمیان میں سے ہاف کر کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہو جانور کو. تو اگر کوئی اہل کتاب ایسا کام کرے گا جانور کے ساتھ تو اس سے وہ جانور حلال نہیں ہو جائے گا. تو بنیادی شرائط جو ہیں وہ ایک یہ تھی کہ بلکہ سے بھی پہلے ایک کہ وہ جانور جو ہے نا وہ حلال جانوروں میں سے ہی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ شیر کو ذبح کر کے وہ پیش کر دے تو مسلمان کے لیے وہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اہل کتاب نے شیر کو ذبح کر کے پیش کر دیا، یا لومڑی کو ذبح کر کے پیش کر دے تو لومڑی بھی جو ہے وہ جائز ہو جائے گی اہل کتاب کی، آف کورس ناٹ. ٹھیک ہے، تو وہی جائز جانور جو کہ مسلمان کے لیے جائز ہوتے ہیں انہی جانوروں کو کی بات ہو رہی ہے. دوسری شرط کیا تھی؟ کہ اس کو جو ہے وہ ذبح جو ہے وہ ذبیحے کے طریقے پہ کیا گیا ہو، جیسے کہ رگیں کاٹنے کا، 3 یا 4 رگیں کاٹنے کا حکم ہے، اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں، تو اس کو ذبح ہی کیا گیا ہو، کسی اور طریقے سے کاٹ پیٹ کر کے بوٹیاں بنا کر کے نہیں پیش کر دیا گیا ہو. اور تیسری جو بنیادی شرط پڑھی کہ کرنے والا واقعی اہل کتاب ہو، ایسا نہ ہو کہ مردم شماری میں سینسس میں جو ہے وہ اس کا نام اہل کتاب کے طور پہ لکھا ہوا ہو، گریگوری نام لکھا ہوا ہو یا کرسٹیانہ نام لکھا ہوا ہو یا کچھ ہو، لیکن اس کا بلیف جو ہے وہ بائبل کے اوپر نہیں ہے یا ٹورہ کے اوپر یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر اس کا بلیف نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتا ہے یا کہتی ہے، تو وہ شخص اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا، نام سے فرق نہیں پڑتا یہاں پر. اس کے علاوہ باقی بہت ساری تفصیل ہم نے پڑھ کے مکمل کری تھی، اور آخر میں جو حضرت نے اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی وجہ بھی بیان کر دی تھی کہ اتنی تفصیل میں کھانے کا موضوع کیوں ڈسکس کیا، کیونکہ جو اسلام کا نیا ایڈیشن دنیا کے اندر لانے کی زور شور کے ساتھ کوششیں کولونیلزم کے ساتھ شروع ہو گئی تھیں. کولونیلزم کے ساتھ پچھلی کلاس میں کیا بتایا تھا کہ اسلام کو تبدیل کرنے کی کوششیں جو کہ شروع تو صحابہ کے دور میں ہو گئی، صحابہ کے دور میں یہ کوششیں شروع ہو گئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں عبداللہ بن سبا یہودی وہ بھیس بدل کر کے مسلمان بن کر کے آ گیا تھا، اور اس نے یہ حرکتیں اسی وقت شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے، لیکن زور شور سے کب شروع، جب زور شور کب پکڑا، وہ جب سے یہ यूरोपियन पावर्स जो हैं उन्होंने टेक ओवर किया पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक इलाकों को, तो इसने जोर पकड़ लिया। और ये भी बात हुई थी कि आज के दौर में जो कि अंदाजन आप कह सकते हैं कि 2010s यानी 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, राइट, ये जो दौर था ना, तो इसके अंदर जो है वो दीन को मस्क कर देने की या तब्दील कर देने की कोशिशें ये सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर जारी हो गई है। ठीक है, इसकी एक वजह अगर आप कहना चाहें, ठीक है, कि कैसे हो गई सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर, तो वो सोशल मीडिया के आने से, हेल फोन के आने से, ये चीज जो है वो हर 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 बंदे, हर हर बड़े बच्चे बूढ़े के हाथ में उनका पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम आ गया। तो ये चीज स्पीड पकड़ गई बहुत ज्यादा। और उसके अलावा भी आप इसके बहुत सारे मुजाहरे जो हैं वो देख सकते हैं, मुसलमान मुआशरों के अंदर देख सकते हैं, मुसलमान मुल्कों की सियासत के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले मुसलमान मुल्कों की सियासत भी जो होती थी ना वो सेक्युलर सियासत होती थी, सेक्युलर सियासत, ला दीनी सियासत होती थी। ठीक है, दीनी कार्ड जो है ना वो सिर्फ मौलवी लोग इस्तेमाल किया करते थे, जो कि उनका हक था, क्योंकि वो मौलवी हैं, उलमा हैं, उनका काम और है क्या? दीनी कार्ड इस्तेमाल करने के अलावा उनका काम है क्या? भाई दीन की बात करेंगे ना, मौलवी हैं तो दीन की बात करेंगे। ठीक है, सियासत में आए ही वो इसलिए हैं दीन की हिफाजत के लिए, तो दीन की बात नहीं करेंगे तो और किस चीज की बात करेंगे? तो पहले सेक्युलर सियासत होती थी सिवाय छोटी सी एक मौलवियों की जमात के जिसको कोई वोट ही नहीं देता था। ठीक है, लेकिन 2010s के अंदर क्या हुआ कि मुसलमान मुल्कों की सियासत ने एक पलटा खाया और वही लोग जो कि सेक्युलर होते थे उन्होंने अपनी हरकतें तो चेंज नहीं करी, राइट, वदाकता भी कुछ ने थोड़ी बहुत करी, ज्यादातर ने कोई वदाकता भी चेंज नहीं करी और अपने तमाशे भी सारे के सारे वही पुराने रखे, लेकिन बात जो है वो दीनी करनी शुरू कर, राइट, बात दीनी शुरू कर दी और अपने आप को सबसे ज्यादा दीनदार के तौर पर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो मुसलमान मुल्कों की सियासत जो है उसने एक दीनी पलटा खाया, दीनी पलटा खाया। ठीक है, तो इस तरीके से दीन का जो नया एडिशन था, तो अब इसको जो है ना वो बाकायदा सियासी सपोर्ट मिल, ठीक है, बाकायदा एक गवर्नमेंटल सपोर्ट मिल गया दीन के न्यू एडिशन को, जो कि पहले क्या होता था, पहले यूरोपियन गवर्नमेंट्स का सपोर्ट होता था, मुसलमान मुल्कों की गवर्नमेंट्स का इसको सपोर्ट नहीं होता था दीन के नए एडिशन को। ठीक है, तो ये सुपरसोनिक स्पीड जो है ना फिर इसको कहा, और अल्लाह रहम करे अभी तो हाइपरसोनिक स्पीड जो है वो तो रहती है, जो कि असल में फितने दज्जाल के बहुत ही करीब का जमाना वो हाइपरसोनिक स्पीड का जमाना लगता है। बहरहाल तो ये सारी बातें जो है वो पीछे हमने करी हैं, आगे हम पेज नंबर 59 के ऊपर पढ़ रहे हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बकदरे जरूरत इसका बयान हो गया। और अच्छा, तो ये जो हरकत एक मुफ्ती साहब से ही हो गई थी, मिस्र के मशहूर आलिम मुफ्ती अब्दा साहब से, तो नए एडिशन वाली हरकत जो है ना, तो इसके ऊपर हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी तफसील के साथ जो है वो सारे मसले को खोल के वाजे किया कि नहीं, ये जो दीन बदलने की तुम कोशिशें कर रहे हो ना, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, एक वाक्य आप में से किसी भाई ने जो है वो शेयर किया था कि लाहौर में जो है ना कुछ बड़े बड़े उलमा जो है वो जमा हुए थे, जिनमें शायद हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी उनमें थे, तो वहां पर एक सिफा क्या कहते हैं क्या सहाफी, एक बड़े मशहूर जो है ना वो सहाफी साहब आए और उन्होंने जो है मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, खुद वो भी मौजूद थे, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह भी मौजूद थे, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने ये बैंकारी के ऊपर बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग और सूद और ये सारी बातें शुरू कर दी। तो अब मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जवाब देने लगे उनको कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये होती है, ये सूद कहलाता है, ये सूद नहीं कहलाता है, और ये जो मुरवजा बैंकिंग सिस्टम है, जो कि उस जमाने में पाकिस्तान के अंदर भी कोई इस्लाम के बैंकिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो सारी बातों का जवाब देने लगे। लेकिन वो जो बंदा था ना सहाफी जो था वो तुला हुआ था, कि बस किसी तरीके से कन्वेंशनल बैंकिंग को ही प्रूव करे कि हाँ यही ठीक है, और मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह से किसी तरीके से कहलवा ले ये बात कि ठीक है कुछ नहीं होता, चलता है चलता है, इस तरह की बात कोई कहलवा ले। तो अब मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह जवाब दें, ये फिर से आगे कोई सवाल कर दे, फिर उसका वो जवाब दें, ये फिर से आगे कोई सवाल कर दे, तो ये बात चलती रही। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह जो है वो खामोश बैठे हुए थे, उनकी आदत नहीं थी कि वो ज्यादा बोलते, बहुत खामोश बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये देखा ना कि ये तो बंदा मान के नहीं दे रहा है, तो उन्होंने उस वक्त ये बात बोली कि भाई क्या नाम था, कुछ सालिक वाले कुछ बंदे का नाम था ना, कहते हैं भाई सालिक भाई बात ये है कि जहन्नुम जो है ना वो बहुत बड़ी है, जिसका जी चाहता है जहन्नुम में जाने का वो जाए, जिसका जी चाहता है जहन्नुम में जाने का वो जाए, हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले, लेकिन अगर हमारी गर्दन के ऊपर पैर रख करके वो जाना चाहेगा ना तो हम उसका पैर पकड़ लेंगे, हमारी गर्दन के ऊपर पैर रख के यानी हम पर फलांग करके अगर वो जाना चाहेगा ना हम उसका पैर पकड़ लेंगे, यानी वो हमारे कंधे पर रख के बंदूक नहीं चला सकेगा, वो हमारा नाम लगा करके किसी हराम को हलाल नहीं कर सकेगा, हम उसको ये नहीं करने देंगे। ये होती है उलमाए हक की शान, ये होता है उलमाए हक का काम, ठीक है। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने यही बात जो है वो अपने बड़ों से सीखी, ठीक है, ये अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से थे, उनसे ये चीज सीखी और उसी को उन्होंने अपनी तफसीर मारिफ कुरान के अंदर फिर तफसील के साथ जबरदस्त तरीके से उसको पूरा किया। तो ये थी जरूरत जिसको उन्होंने लिखा ना कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बकदरे जरूरत इसका बयान हो गया, यानी इसकी जरूरत थी हमने बयान कर दिया, और उसकी पूरी तफसीर मेरे रिसाले इस्लामी जबीहा में है, वहां देखी जा सकती है, यानी इसके अलावा और भी पूरी किताब लिखी हुई है इस्लामी जबीहा, उसमें और तफसील मिल जाएगी। तो फिर इनके बेटे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बाकायदा अरबी के अंदर किताब लिखी इस्लामी जबीहे के ऊपर, कवानीन जो है वो इस्लामी जरिए के, पूरी किताब है वो अरबी जुबान के अंदर, जिसका फिर अंग्रेजी में तर्जुमा भी हमारे एक अमरीकी भाई ने जो फिर उसका तर्जुमा पूरा अंग्रेजी में किया। अच्छा, दूसरा मसला इस जगह ये है कि कुरान करीम के इस इरशाद में एक हुक्म जो मुसलमानों के लिए बयान फरमाया कि अहले किताब का ताम जो तुम्हारे लिए जायज है ये तो जाहिर है, मगर इसका दूसरा जुज यानी मुसलमानों का खाना अहले किताब के लिए जायज है, इसका क्या मकसद है? ठीक है, हमने तर्जुमे और खुलासे तफसीर के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया था कि वताआमुकुम हिल्लुन लहुम, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है, इसका क्या मकसद है? तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अब आए हैं इस बात के ऊपर, यानी अब तक जितनी बात चल रही थी ना वो सिर्फ यहां तक थी, ताआमुल लदीना ऊतुल किताबा हिल्लुन लकुम, अब तक सिर्फ यहां तक कवर हुआ है, अब कवर हो रहा है वो तआमकुम हिल्लुल्लहुम, तो उसमें फरमाते हैं कि इसका क्या मकसद है, क्योंकि अहले किताब जो कुरानी इरशादात के कायल ही नहीं, उनके लिए क्या हलाल है क्या हराम इसके बयान से क्या फायदा, वो को थोड़ी आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या चीज जायज है, ठीक है ना। तो फिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी बात क्यों कही, कुरान मजीद के अंदर ये अल्लाह का कलाम है और आपको पता है कि ये इजमाली किताब है, इसमें हर चीज की तफसीर जो है वो लफ्जन मौजूद नहीं है, इशारतन तो मौजूद है हर चीज की तफसीर लेकिन लफ्जन लफ्जन मौजूद नहीं है, और ये एक मुख्तसर किताब है, हिफ्ज करने करने को आए तो कोई बूढ़ा भी हिफ्ज कर लेता है, छोटा सा बच्चा भी हिफ्ज कर लेता है, इसमें एक एक लफ्ज जो है ना वो यानी अल्लाह ताला ने चुन चुन करके रखा है, बिल्कुल गैर जरूरी या गैर यानी जिसकी के अहम उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये तीन अल्फाज कहे जो कि बजाहिर गैर अहम लग रहे हैं तो क्यों कहे, तो उसके ऊपर फरमाते हैं कि तफसीर बहरे मुहीत वगैरह में इसके मुतालिक फरमाया कि दरअसल ये हुक्म भी मुसलमानों ही को बतलाना मंजूर है कि तुम्हारा जबीहा उनके लिए जायज है, ठीक है, क्योंकि कुरान जो है ये मुसलमान मानते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, ईसाई को थोड़ी मानता है कि ये अल्लाह की किताब है, तो मुसलमानों को ही बताना ये तुम्हारा जबिया उनके लिए हलाल उनके लिए जायज है। इस वास्ते तुम अपने जबीहा में से किसी गैर मुस्लिम अहले किताब को खिला दो तो कोई गुनाह नहीं होगा। ठीक है, यानी वेरी सेंसिबल बात जो है वो हमें, यानी हम जैसे छोटों को भी जो है वो समझ में आ जाए कि भाई मुसलमान को अल्लाह ताला हिदायत दे रहे हैं ना, ये किताब हिदायत है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से फायदा होगा क्या करने से नुकसान होगा। तो अपना खाना दूसरों को खिला दिया, अगर अल्लाह की तरफ से ये इजाजत ना है नहीं है तो फिर ये तो मुसलमान के लिए गुनाह हो जाएगा, ये तो मुसलमान के लिए नुकसानदेह हो जाएगी ये बात, कि तुमने जो खाना अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जायज किया था वो तुमने किसी ऐसे को खिला दिया जो कि तुम्हारे नबी का इनकार करता है, जो कि तुम्हारी किताब का इनकार करता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसको क्लियर कर दिया कि नहीं ये जायज है, तुम्हारे लिए जायज है कि तुम इनको खिला दो, गुनाह नहीं होगा तुम्हारे। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस आ गई ना ऊपर से, यानी अपनी कुर्बानी में से किसी किताबी शख्स को तुम दे सकते हो, और अगर हमारा जबीहा उनके लिए हराम होता तो हमारे लिए जायज ना होता कि हम उनको इसमें से खिलाएं। इसलिए गो ये हुक्म बज़ाहिर अहले किताब का है मगर दर हकीकत इसके मुखातब मुसलमान ही हैं। तो ये बहर मुहित में ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन लिखी है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई सवाल कर सकता है कि भाई इसका मतलब ये है कि सिर्फ अहले किताब को खिलाना जायज है, क्या काफिरों को खिलाना जायज नहीं है, यानी जो नॉन अहले किताब है मुशरिकीन है हिंदू हैं तो उनको खिलाएंगे तो क्या में गुना हो जाएगा। तो उसका तो सराहतन यहाँ पे जवाब है नहीं, लेकिन सुन्नत से ये पता चलता है कि गैर मुस्लिम को खाना खिलाया खिलाया जा सकता है। ठीक है, तो अब खालिसतन अहले किताब का यहाँ पे जिक्र क्यों फरमाया, क्योंकि बात अहले किताब के कॉन्टेक्स्ट में अहले किताब ही की चल रही थी, उन्हीं के खानों की चल रही थी, तो अहले किताब के लिए एक्सप्लिसिटली बता दिया, बाकियों के लिए इम्प्लिसिटली कि भाई हाँ तुम उनको भी खिला सकते हो, या सुन्नत से जो है वो उसको करवा के दिखला दिया। हर चीज तो नहीं कुरान में है ना, नमाज की तो रिकतें कुरान मजीद के अंदर नहीं है, तो वो कहाँ से आई, सुन्नत से आई। ठीक है, तो उसी तरह से और चीजें भी बहुत सी हमें सुन्नत से मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से मिलती है। और तफसीर रूहुल मानी में एक और एक्सप्लेनेशन इसकी, तफसीर रूहुल मानी में बहवाला सुद्दई इस जुमले का एक और मंशा जिक्र किया है, वो ये कि अहले किताब यहूद व नसारा के मजहब में बाज हलाल जानवर या उनके कुछ हिस्से सजा के तौर पर हराम कर दिए गए थे, इसलिए वो जानवर या जानवर का हिस्सा ताम अहले किताब में बजाहिर दाखिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो हरकतें होती थी वो मीन मीख निकाला करते थे और एतराज किया करते थे चीजों के ऊपर, अल्लाह के हलाल की भी चीज को जो है ना उसके ऊपर भी एतराज करते, ये क्यों, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों नहीं, इस तरह की, तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर सजा आती थी कि बस ठीक है ये तुम्हारे लिए हराम हो गया। ठीक है, नबी मौजूद होते थे बनी इसराइल के, तो वही जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो चलती रहती थी, तो इस तरह से कुछ जो है ना वो उनको सजा के तौर पर हराम कर दिए गए थे। लेकिन इस आयत की इस जुमले ने बतला दिया कि जो जानवर तुम्हारे लिए हलाल है वो अहले किताब उसको हलाल नहीं जानते हों, अगर अहले किताब के जबह करदा मिले तो वो भी मुसलमानों के लिए हलाल ही समझे जाएंगे। अतआमुकुम हिल्लुल्लहुम में इस तरफ इशारा किया गया है। ठीक है, यानी बजाहिर तो अल्फाज से ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन बजाहिर का मतलब तो होता है ना सराहतन पता चल गया, लेकिन सराहतन नहीं है इशारतन है कि तआमुकुम हिल्लुल्लहुम तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है, कि जो चीजें तुम्हारे लिए हलाल होती है ना अगर वो उसको हराम कहीं भी तो भी जो है ना वो हलाल ही है। इस तकरीर पर भी आखिरकार इस जुमले का ताल्लुक खुद मुसलमानों के साथ ही हो गया। अब ये थोड़ा सा इसको समझना जरा सा मुश्किल ही लगता है, तो हम जो है ना वो तो इक्तफा करते हैं कि जो हमारे हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह, हमारे हकीम उल उम्मत से क्या मुराद, जो हमारे जमाने के हकीम उल उम्मत रहमतुल्ला अलैह है ना, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्ला। ठीक है, तो वो चूंकि हमारे जमाने से ताल्लुक रखते थे, हमारे हालात से ताल्लुक रखते थे, ठीक है, तो उनकी जो बात है ना वो हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट भी होती है और उसको समझना भी हमारे लिए ज्यादा आसान हो। अब है तो ये तफसीर रूहुल मानी के जो इमाम अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने तफसीर रूहुल मानी लिखी, लेकिन वो कई सौ साल पहले लिखी। तो अब कई सौ साल पहले वाली बात जो है तो ऐन मुमकिन है कि हम जैसे कमजोर कम अकल कम इन लोगों के लिए समझना मुश्किल हो। हाँ ठीक है, गहराई का इल्म रखने वाले, इनकी गहराई रखने वाले वो तो समझ लेंगे उनकी बात को, हम जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से तफसीर बहर मुईज जो है वो भी इसी तरह कई सौ साल पुरानी लिखी हुई तफसीर है, वो भी हमारे लिए समझना। तो अल्लाह ताला ने ना अपने दीन का निज़ाम ऐसे चलाया है कि हर दौर हर जमाने में जो अहले इल्म अल्लाह ताला ने पैदा किए, जिनको इल्म अता फरमाया, समझ अता फरमाई, वो हर दौर हर जमाने के हिसाब से समझाते हैं बात। ठीक है ना, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने भी हमारे जमाने के कहलाएंगे, इनके शेख थे हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जो इस बात की तफसीर करी है ना, वो फिर हमारे लिए और भी ज्यादा आसान है। खुलासे तफसीर के अंदर जो हमने पढ़ा था कि जो लोग के कहा है कि तुम्हारा जबीहा उनको हलाल है, तो उसकी तफसीर पहले इन्होंने लिख दी थी कि ये जो फरमाया ना कि उनका जबीहा तुमको हलाल है और उसका हलाल होना ऐसा ही यकीनी है जैसा कि तुम्हारा जबीहा उनको। ठीक है, तो अब ये तफसीरन जो हजरत ने चंद अल्फाज ऐड कर दिए हैं ना, इससे बात जो है वो और भी ज्यादा आसान हो गई हमारे लिए समझना कि भाई ये जो उनका जबीहा हमारे लिए हलाल, ये मानना जरा मुश्किल काम था कि वो तो हमारे नबी को नहीं मानते, वो तो हमारे कुरान को नहीं मानते, वो तो हमारे दुश्मन हैं, वो तो हमारे खिलाफ जो है वो हमले करते रहते हैं, वो तो हमें खत्म करने की साजिशें करते रहते हैं, तो उनका खाना हमारे लिए हलाल होना ये तो यानी एक होता है ना अभी दिल के अंदर एक इश्काल पैदा होता है, एक जो है वो तबी तौर पर ठीक है आपने अकली तौर पे जो है वो तस्लीम कर लिया, लेकिन तबीयत के अंदर थोड़ी कराहत है, तबीयत के अंदर जो है वो थोड़ी सी अनसेटलनेस है। तो उसको अल्लाह ताला ने इस दूसरे जुमले के जरिए से जो है वो रिमूव किया कि जिस तरह तुम्हारा जबिया उनको हलाल है ना, जिसके बारे में तुम सोचते भी नहीं हो कि भाई हमारा तो उनके लिए क्यों हराम होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से उनका भी जो है वो हमारे लिए तुम्हारे लिए हलाल, ये पेज नंबर 42 के ऊपर खुलासे तफसीर के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज जब हम कुदरतन पढ़ रहे थे खुलासे तफसीर में, तो उसी वक्त जो है वो सूरह अनआम के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह की एक बात आई थी जो कि उस वक्त हमने डिस्कस करी थी। अब वो मुझे खुद भी जहन नहीं आ रही कि एग्जैक्टली वो उस वक्त वहां पे क्या बात थी, सूरह नाम वाली बात। बहरहाल तो ये दो रीजनिंग जो है ना वो बयान करती हैं यहाँ पर तफसीर रूहुल मानी वाली, और फिर तफसीर मजहरी। तफसीर मजहरी में फरमाया कि फायदा इस जुमले का फर्क बयान करता है। ठीक है, ये भी एक काफी इजी टू अंडरस्टैंड वाली एक्सप्लेनेशन है कि ये जो जुमला फरमाया ना कि तआमुकुम हिल्लुल्लहुम, तो ये जुमला इस वजह से बयान फरमाया कि एक बात का फर्क बयान करना है असल कि जबाएह के मामले में और निकाह के मामले में फर्क ये है, फर्क है। ठीक है कि जबाएह तो दोनों तरफ से हलाल है, तुम्हारा उनके लिए हलाल है, उनका तुम्हारे लिए हलाल है, अहले किताब का जबीहा मुसलमानों के लिए हलाल है और मुसलमानों का जबीहा अहले किताब के लिए हलाल है, मगर औरतों के निकाह का ये मामला नहीं। ठीक है, वो वन साइडेड है, अहले किताब की औरतें मुसलमानों के लिए हलाल हैं मगर मुसलमानों की औरतें अहले किताब के लिए हलाल नहीं। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने अपनी सुप्रीम विजडम के तहत यहां पर इस जुमले को बयान नहीं किया कि तुम्हारी औरतें उनके लिए हलाल नहीं, इस जुमले को अल्लाह ताला ने स्किप कर दिया यहाँ पे, या बयान नहीं किया जो भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। इसको जो है वो अल्लाह ताला ने इस तरीके से यहाँ पे बयान किया कि जबीहे वाले मामले को टू साइडेड बयान किया, निकाह वाले मामले को सिर्फ वन साइडेड बयान किया, सेकंड साइड को बयान ही नहीं कि तुम्हारी औरतें उनके लिए हलाल नहीं, यहां पे बयान नहीं किया बल्कि किसी और जगह पे बयान किया जिसका जिक्र आगे आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों किया, इसकी कोई हिकमत अगर आपके जहन में आती हो, हम तो क्लास के अंदर काफी अरसा पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ऐसा लगा क्यों करते हैं, कि बात जो है ना वो कहीं और बयान कर देते हैं, हर जगह बयान नहीं करते, कहीं पे करते हैं कहीं पे नहीं करते हैं, कहीं पे नहीं करते कहीं पे करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो जब खाने की बात हो रही थी तो खाने के लिए टू साइडेड बयान कर दिया ना कि उनका तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा उनके लिए हलाल है। लेकिन फिर उसके बाद निकाह की बात आई, निकाह की बात के अंदर वन साइडेड बयान किया, सेकंड साइड क्यों नहीं बयान करी भाई, उसकी वजह कोई बता सकता है? अगर उसी लाइट में बयान करें जो कि हम कुछ अर्सा पहले, बल्कि काफी अर्सा पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एक मिसाल के साथ। मिसाल का ताल्लुक जी माशाल्लाह, उनको याद है कि ताकि इल्म वालों के हम मोहताज रहे, इसके लिए मिसाल क्या दी थी वो भी याद है आपको? एक मिसाल दी थी जो कि अब इतनी ज्यादा अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जब हमने दी थी ना उस वक्त बड़ी अप्लीकेबल थी, चंद साल पहले तक। उलमा की अहमियत बताने के लिए, हाँ ये तो सही है, आपने भी सही जवाब दिया, वही जो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मिसाल क्या बयान की थी इसको समझाने के लिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसका ताल्लुक जो था ना वो उस जगह से था कि जिस जगह में से बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, यानी सऊदी अरब। सही, सऊदी अरब से इस रियल लाइफ एग्जाम्पल का ताल्लुक था। तो वो ये दी थी कि जब सऊदी अरब में आप जाते हैं ना किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, खुसूसन जवाजात में, तो अगर आप जो है ना वो एक्सपैट हो, पाकिस्तानी इंडियन, ठीक है, या अमेरिका अमेरिका से आए हुए हो, तो आपको इतनी अच्छी अरबी वगैरह तो नहीं आती है, अक्सर को तो कुछ कुछ भी नहीं आती है, ठीक है। तो अब आप जाते हैं जवाजात, और वहां पे आपको जो है वो अपना पासपोर्ट का या इकामे का या फलानी चीज का काम करना होता है, तो आप उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप ये फॉर्म भर के दें, आप फलानी जगह जाएं वहां ये करें, तो आपको पता चलता है कि वहां तो सब कुछ अरबी में है, सब कुछ अरबी में है। अब आप कहते हैं यार अब मैं कैसे करूँ ये वाला काम, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होता है कि फिर आपको पड़ती है मंदूब की जरूरत, राइट। मंदूब जो है ना ये उस सऊदी बंदे को कहते हैं के जो के इस तरह के ऑफिसेस के अंदर बैठे हुए होते हैं या आपके अपने एचआर डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, वो फिर आपका काम करते हैं, ठीक है ना। अब अगर उन्होंने ये फॉर्म्स और ये सारे प्रोसेसेस अरबी की बजाय उर्दू में भी कर दिए होते, अंग्रेजी में भी कर दिए होते, तो फिर क्या होता, अब मंदूक की जरूरत ही नहीं रहती, ठीक है ना। अब हर बंदा जो है ये काम कर सकता होता, तो फिर इनके बंदे क्या करते, इनके बंदे तो फिर जिनको बस यही काम आता है और उससे ज्यादा तो ये लोग काम करते भी नहीं थे, अब तो रगड़े दे दे करके सारे काम कर रहे हैं ना, उस वक्त तो कोई काम नहीं करते थे, तो वो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वो सिर्फ यही वाला काम करते थे, मंदूक वाला काम, ठीक है ना। तो अब वो लोग जो है ना वो आउट ऑफ सर्विस हो जाते, वो लोग आउट ऑफ सर्विस हो जाते, उनकी रेलिवेंस खत्म हो जाती, ठीक है। तो जो सऊदी गवर्नमेंट थी वो इस तरीके से अपने बंदों को यानी अपने शहरियों को सपोर्ट करती थी, उनको जो है वो क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज देती थी, सपोर्ट करती थी, उनकी साइड लेती थी कि भाई हमारे बंदे भी जो है ना वो काम के रहे, उनकी भी जॉब लगी रहे, उनका भी काम आता रहे, लोग उनके मोहताज रहे, क्योंकि वो उनके बंदे हैं, उनके शहरी हैं, ठीक है ना। और बाहर से जो आए हुए हैं पैसा कमाने के लिए वो आपके शहरी नहीं है, वो उनके शहरी नहीं है, ठीक है। तो अपनों को जो है ना वो इस तरीके से सपोर्ट किया जाता है कि उनके लिए जॉब्स क्रिएट करी जाती है, उनके लिए जॉब क्रिएट करी जाती है, कौन क्रिएट करता है, जिसके हाथ में कंट्रोल होता है। इसी तरीके से उलमाए कराम जो होते हैं ना, जो दीन का वाकई इल्म हासिल करके इल्म की का हक अदा करते हैं, जो 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 अंबिया की विरासत का हक अदा करते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ठीक है। तो ऐसों को जो ये जो लोग होते हैं ना, अल उलमा हैं, जिनकी क्वालिटी क्या है कि वो वरसतुल अंबिया होते हैं, तो ये अल्लाह के अपने बंदे होते हैं। ये कौन होते हैं, ये अल्लाह के अपने बंदे होते हैं, ये जाती ताल्लुक वाले लोग होते हैं अल्लाह ताला के साथ, ये अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले लोग होते हैं, ये अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने वाले लोग होते हैं, दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को कायम रखने वाले लोग होते हैं, ये अल्लाह के खास बंदे होते हैं। तो अल्लाह ताला इनके लिए जॉब क्रिएट करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं। कुरान अजीम उशान ये मेरी किताब है, इसमें तुम्हारे लिए हिदायत है, इसमें तुम्हारे लिए कामयाबी है, इसमें तुम्हारे लिए नाकामी की जो है वो बचने की तदबीरें हैं, तुम मर जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नहीं सर्वाइव कर सकोगे जब तक तुम इस कुरान को नहीं समझोगे, लेकिन इस कुरान को समझने के लिए तुम्हें मेरे खास बंदों के पास आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे खास बंदों के पास आना पड़ेगा, ठीक है ना, जिन्होंने अपने आप को मेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया है, ये मेरे शहरी हैं, ये मेरे सिटीजन्स हैं, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरीके से ना, जैसे कि सऊदी फॉर्म्स अंग्रेजी में नहीं है, उर्दू में नहीं है, उसी तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐसे करके नहीं चीजें बयान कर दी कि हर एरा गैरा नथु गैरा, राइट, हमारे जैसा टॉम डिक एंड हैरी वो जो है ना उठा करके कुरान मजीद को गए और कहा जी मुझे सब समझ में आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है पूछने की, नहीं, फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून, जो तुम्हें नहीं पता है ना तुम्हें अहले जिक्र से पूछना, ये कुरान मजीद हुक्म भी देता है उनके लिए और उलमा के लिए, इन नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये कुरान मजीद अपने अल्फाज में उलमा की अजमत बयान करता है, अल्लाह ताला अजमत बयान करते हैं। तो बहरहाल तो ये एक हिकमत जो है वो समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से यहाँ पे औरतों का जिक्र नहीं किया, और तफसीर मज़री ने इसका फिर इशारा भी आलम दीन ने करके बताया कि औरतों के निकाह का ये मामला नहीं है, अहले किताब की औरतें मुसलमानों के लिए हलाल है, मगर मुसलमानों की औरतें अहले किताब के लिए हलाल नहीं है। अच्छा, तीसरा मसला ये है कि अगर कोई मुसलमान माज अल्लाह मुर्तद होकर यहूदी या नसरानी बन जाए तो वो अहले किताब में दाखिल नहीं है, सेज हु, राइट, यहाँ पर एक सवाल होता है सेज हु, ये अंग्रेजी जुबान का एक तरीका होता है एतराज करने का कि आपने ये बात कही है, आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले, है ना, कहते हैं ना आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले, जो आपने ये कह दिया कि कोई मुसलमान माज अल्लाह मुर्तद होकर यहूदी नसरानी नहीं बन जाए तो वो अहले किताब में दाखिल नहीं है, सेज हु, इसने कहा भाई ये बात, तो ये बात जो है वो उलमा ने कही, ठीक है ना, उलमा ने कही, तो उलमा कौन होते हैं ये बात कहने वाले, उलमा कौन होते हैं, वही होते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले बयान किया अकली दलील के जरिए से, उलमा ये होते हैं अल्लाह के खास बंदे, ठीक है ना, अल्लाह के खास बंदे, ये किसी नस्ल के लोग नहीं होते कि भाई ये जो है वो नबी की नस्ल से जो होगा वो उलमा होगा, ये कोई नस्ली कोई किस्म की चीज है, या ये इसका ताल्लुक किसी वतन के साथ होता है कि भाई इस इलाके के रहने वाले लोग ये उलमा कहलाएंगे, नहीं, ऐसी तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं उलमा की। उलमा कौन है, जो भी दीन का इल्म उसके सही सोर्सेस से सही तरीके से हासिल कर ले वो उलमा के लिए क्वालिफाई कर जाता है, चाहे वो पहले काफिर था बाद में वो मुसलमान हुआ, चाहे वो गुलाम था लेकिन उसने गुलामी की हालत में इल्म हासिल कर लिया, वो उलमा का मुकाम हासिल कर जाता है, ठीक है ना, चाहे वो अजमी था उसने इल्म हासिल कर लिया वो उलमा के लेवल के लिए की टाइटल के लिए क्वालिफाई कर जाता, ठीक है। तो अब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया है, तो अब इस इल्म के अंदर फिर वो इज्तिहाद करते हैं इस इल्म की बुनियाद पर, और फिर वो इस इज्तिहाद के तो बताते हैं कि भाई कोई मुसलमान अगर मुर्तद होकर के यहूदी बन जाए नसरानी बन जाए तो वो अहले किताब में दाखिल नहीं है, बल्कि वो मुर्तद है उसका जबीहा बइजमाए उम्मत हराम है। क्या मतलब होता है बइजमाए उम्मत का, बइजमाए उलमाए उम्मत हराम, बइजमाए उलमाए उम्मत यानी उलमाए उम्मत का इस बात पर कंसेंसस है कि वो उसका जबिया जो है वो हराम है क्योंकि वो अहले किताब में नहीं है शाह, ठीक है, मतलब आपको कह देने से वो अहले किताब नहीं बन जाता, तो उलमा की अहमियत पहले बयान हो गई, फिर उसके बाद उलमा की तरफ से एक ऐसा हुक्म आया जिसके ऊपर जो है ना वो जो हला होते हैं वो फिर एतराज करते हैं कि भाई सेज हु, किसने कहा, तुम कौन होते हो हुक्म लगाने वाले, भाई हम खास बंदे हैं ठीक है, वो कहते नहीं अपनी जुबान से, वो तो हम जैसे जो हला कह रहे हैं कि वो खास बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई अपने मशाइख की तरबियत के जरिए से, तरबियत के रास्ते से अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई कि अपने आप को जाहिल समझें और उलमा को उलमा समझें, उलमा को खास बंदे समझें, ठीक है, अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, वरना और कुछ नहीं, हमारे इसमें कोई कमाल नहीं है। आगे फरमाते हैं, इसी तरह जो मुसलमान जरूरियात और कतियात इस्लाम में से किसी चीज का इनकार करने की वजह से मुर्तद हो गया, एक तो हो गया ना कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस रिलीजन, नाउज बिल्ला ये कह करके, फिर वो जा करके चर्च जा करके उसने जो है वो कोई यहूदी कलमा पढ़ लिया, सिनेगॉग जा करके या चर्च जाके ईसाई का कलमा पढ़ लिया, जो भी किया ईसाई हो गया, तो ये तो होता है सराहतन मुर्तद हो जाना, एक होता है सराहतन मुर्तद नहीं हुआ ठीक है, बल्कि इम्प्लिसिटली जो है वो मुर्तद हुआ, एक्सप्लिसिटली नहीं हुआ, इम्प्लिसिटली हुआ। इम्प्लिसिटली मुर्तद होने का तरीका क्या होता है कि अपने आप को मुसलमान कहता भी है या अपने आप को मुसलमान समझता भी है, लेकिन जरूरियात दीन या कतियात इस्लाम में से किसी चीज का इनकार कर दिया इसने, तो ये भी मुर्तद हो जाता है, जिसकी तफसील कई दफा हम बात कर चुके हैं, बल्कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ईमान और कुफर कुरान मजीद की रोशनी में पूरी किताब जो है वो इसी क्लास के अंदर हम पढ़ के समझा के मुकम्मल कर चुके हैं, तो उसके अंदर ये सारी बातें थी कि कैसे इंसान इम्प्लिसिटली मुर्तद हो जाता है, अगरचे वो कुरान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा भी करता हो, वो भी मुर्तद हो जाता है, वो भी मुर्तद है ठीक है। 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हो, कुरान मजीद की तिलावत करता हो, हज और उमरे करता हो, रमजान मुबारक के रोजे रखता हो, हर साल अपने माल की ज़कात निकालता हो, लेकिन वो मुर्तद होता है, क्यों मुर्तद हो गया, किसी एक जरूरियात दीन का उसने इनकार कर दिया या किसी एक कतियात इस्लाम का उसने इनकार, ठीक है, तो ये हम क्यों बता रहे हैं ताकि हर किसी को मुर्तद मुर्तद कहना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल तो ऐसा बहुत आम हुआ, नहीं ये हम इसलिए बिल्कुल भी नहीं बता रहे, हम सिर्फ इसलिए बात करते हैं ताकि एहतियात से चले, हम खुद एहतियात से चले, हम जो है ना जुबान को ऐसे बेलगाम ना छोड़ दिया करें कि कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, कि किसी के ऊपर जो है वो कोई हुक्म के ऊपर कोई एतराज कर दिया, किसी बात के ऊपर जो है वो अपनी तरफ से कोई कमेंट मार दिया, खामोश नहीं पता, खामोश रहो, पूछो जा करके, खुद से डिक्लेरेशन मत किया करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कौन सी वाली बात की वजह से तुम दीन इस्लाम से खारिज हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ठीक है, और कयामत के दिन जो है ना फिर हिसाब किताब जो है वो इसी बुनियाद पर होगा कि तुम खारिज हो चुके थे, अब जो है वो काफिरों के साथ हिसाब किताब हो रहा है, ये इस एहतियात की वजह से बात की जाती है, खाली अपने एहतियात की वजह से। अच्छा, महज कुरान पढ़ने या कुरान पर अमल करने का दावा करने से वो अहले किताब में दाखिल नहीं हो सकता, कितनी मजे की बात करी हजरत ने कि कुरान भी तो किताब ही है ना, अल्लाह ताला की किताब है, तो अब जो है वो जरूरियात दीन का इनकार करके मुर्तद हो गया, लेकिन कहते हैं मैं तो कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मानता हूँ, तो मुझे अहले किताब में तो शामिल करो कम से कम, ठीक है तुम तो मुसलमान में शामिल नहीं करते, अहले किताब में से तो मुझे शामिल करो ठीक है, तो नहीं जी आप अहले किताब में शामिल नहीं होंगे, जिस तरह आप यहूदों नसारा में शामिल नहीं हो सकते, आप कुरान पढ़ करके भी अहले किताब में शामिल नहीं हो सकते, हाँ किसी दूसरे मजहब मिल्लत का, यानी यहाँ पे क्यों इस बात को बयान कर रहे हैं कि अब वो कहे कि मेरा जबीहा, यानी वो जबीहा शॉप पे बैठता था, तो उसने कहा भी मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, मैं तो कुरान को अल्लाह की किताब मानता हूँ, तो अब जो है ना ये मत करो कि मेरी दुकान से अब जो है वो गोश्त खरीदना बंद करो, क्योंकि मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, तो मुझे कम अज कम अहले किताब ही मान करके मेरी दुकान से गोश्त खरीद लिया करो, नहीं उसको कहा जाएगा कि नहीं जी आप जो है ना वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं हर तरह से, अब आपकी दुकान से हम गोश्त नहीं खरीद सकते क्योंकि आप मुर्तद हो चुके हैं ठीक है, तो कोई कसाई साहब जो है ना वो और भी ज्यादा एहतियात करेंगे, मतलब मजाक करूंगा खाली, हर मुसलमान एहतियात करे इस किस्म की हरकतें करने से, और मजाकन खाली ये बात की जा रही है, अगर आप कसाई हैं गोश्त का कारोबार करते हैं तो आप अपने कारोबार की भी वजह से इसके एहतियात करें, वरना आप दुनिया के भी जाएंगे, दीन के नहीं खाली जाएंगे दुनिया के भी जाएंगे, ये लेकिन सिर्फ मजाक की बात है, वरना दीन का जाना ही सब कुछ जाना है। अच्छा अगली बात कहते हैं कि हाँ किसी दूसरे मजहब मिल्लत का आदमी अगर अपना मजहब छोड़कर यहूदी व नसरानी बन जाए तो वो अहले किताब में शुमार होगा और उसका जबीहा हलाल करार पाए। ठीक है जी, तो ये सब किस बुनियाद पर है? ये इजमाए उलमाए उम्मत की बुनियाद पर, जिसको के कुरान अजीम शान ने खुद हुज्जत करार दिया है कि दीन के अहकाम जो हैं वो इजमाए उलमाए उम्मत से भी लिए जाए। तो सारी मौलवियों ने जो है ना मिल करके ये फैसला कर लिया कि नहीं जी, हमारा इजमा जो है ना वो भी दीन में हुक्म की हैसियत रखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद ने खुद जो है वो उलमाए इस्लाम की इजमा को जो है वो हुज्जत करार दिया है। उसके ऊपर हमारे मशायख ने सारी दलाइल लिखे हुए हैं और हम क्लास के अंदर कभी पढ़ भी चुके हैं उसको। अच्छा, अब जो है वो टाइम तो क्लास का पूरा, कितने बजे क्लास है? 8:30 बजे। अभी क्लास का टाइम हो गया, बस ये थोड़ा सा टच कर लें जो दूसरा मौजूद, शायद पता नहीं कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं उसका, है शादी ब्याह वाला मामला, गोरियों के साथ शादी। ठीक है, तो उसको शुरू कर लेते हैं। कुछ लोग कहीं बहुत मायूस ना हो जाए कि आपने तो पूरा घंटा ही निकाल दिया बगैर इस काम इस बात के। तो आगे जो है ना, फिर अब तीसरा जुमला, यानी आयत तो एक ही है, पांचवी आयत, उसका तीसरा हिस्सा के वल्मुहसनातु मिनल मुमिनाती वल्मुहसनातु मिनल नजीना ऊतुल किताब मिन कबलिक इदा आतैतुमुहुन्न उजूरहुन्न मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख्दान, यानी तुम्हारे लिए मुसलमान अफीफ यानी इफ्फत और पाक दामिनी वाली औरतों से निकाह हलाल है। इसी तरह अहले किताब की अफीफ व पाक दामन औरतों से भी निकाह हलाल है। ठीक है, तो पहले तो कोई अफीफा तलाश करें, मुसलमानों में भी वो सारी बात इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर में पढ़ेंगे कि अफीफा साहिबा जो हैं वो मुसलमानों में तलाश करें, अल्लाह के कुरान से हुक्म लेना है ना, तो मुसलमान अफीफा और फिर उसके बाद अहले किताब से ही अगर आपको करने का शौक हो रहा है तो अफीफा साहिबा तलाश करें उसके लिए, नाम की नहीं काम की। ठीक है, तो कोई सवाल है अगर पूछ सकते हैं। वैसे तो माशाल्लाह जो हजरत आगे बच्ची लिखी है, उम्मीद है कि उसके बाद सारे सवालों के जवाब वैसे ही मिल जाएंगे। ये चीज बहुत रेलेवेंट है आज के जमाने में और भी ज्यादा। पहले तो मुसलमान जो है वो अहले किताब के इलाकों को जंग के जरिए से, जिहाद के जरिए से पता किया करते थे, तो उस वक्त जो है वो इसकी रेलेवेंस होती थी, लेकिन फतह करते थे ना तो उस वक्त तो अपर हैंड होता था। फातिहीन के तौर पर यूरोप जाते थे, फातिहीन के तौर पर ग्रीस में दाखिल होते थे या मिस्र में दाखिल हुए, शाम में दाखिल हुए, सारे के सारे ईसाइयों का इलाका था ये। अब तो मुसलमान क्यों जाते हैं यूरोप? फतह करने के लिए जाते हैं। अमेरिका फतह करने के लिए जाते हैं, या फतह करके अमेरिका जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया फतह करके ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं। अब किस तरह से जाते हैं? अब तो पहले से फतह हो चुके होते हैं, अपने मुल्क में रहते हुए ही फतह हुए हुए हैं। ठीक है ना, तो मफतूह और मगलूब और मरूब, राइट, इस कैफियत में ऑस्ट्रेलिया यूरोप अमेरिका या जो भी दुनिया का मुल्क हो वहां पर मुसलमान इस हैसियत में लाते। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता होगा हमें हकीकत तो यह है कि हमें भी अंदाजा है कि क्या होता होगा। यहाँ तो फातिहीन के बारे में बात हो रही है ना, मफतूहीन के बारे में तो फिर वैसे भी हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।